लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी की चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरे कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते हैं जो सदैव प्रेरितिक कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कार्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, एवेंजेली गौडियम का तीसरा अध्याय सुसमाचार की घोषणा के बारे में जिक्र करता है। ख्रिस्तियों के रूप में हम में से प्रत्येक जन अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करने हेतु बुलाए गए हैं। श्रोताओं, हमने अपने कल के प्रसारण के अंतिम भाग में प्रवचन की महत्वपूर्णता पर जिक्र करते हुए कहा कि धर्म ग्रंथ के पाठों में हमारे लिए विशेष संदेश निहित होते हैं, जिसे उपदेशक प्रवचन के रूप में विश्वासियों को प्रस्तुत करता है। इस भांति उपदेशक को चाहिए कि वह ईश वचन को एकाग्रचितता में ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए उसे अपने में आत्मसात करे। श्रोताओं, उपदेशक को सर्वप्रथम इस बात की जरूरत है कि वह ईश वचन के संग अपना एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करे। भाषा संबंधी या व्याख्यात्मक ज्ञान, यद्यपि यह अपने में निश्चित रूप से जरूरी है, काफी नहीं है। उसके लिए यह जरूरी है कि ईश वचन के संग उसकी पहुंच नम्रता और प्रार्थनामय हृदय में हो, जिससे वह विचारों और अनुभवों की गहराई में जा सके जो उसे एक नया रूप प्रदान करेगा। यह हमारे लिए अच्छा है कि हम प्रतिदिन अपने अनुभवों में नवीनता लाएं और हर रविवार को, जहां हम ईश्वर के वचनों को अपने प्रवचन में घोषित करने हेतु तैयारी करते हैं। हमें अपने को परखने की जरूरत है कि क्या हमने ईश वचन के प्रेम में अपने को विकसित किया है, जिसे हम लोगों के सामने घोषित करते हैं। हम इस बात को ना भूलें कि उपदेशक की पवित्रता जितनी अधिक या कम हो, यह ईश वचन की घोषणा में उसकी एक सच्ची प्रभावकारिता को व्यक्त करता है। इसके बारे में संत पौलुस कहते हैं, हम मनुष्य को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। यदि हम में एक सजीव इच्छा है, जहां हम प्रवचन देने के पूर्व अपने लिए वचनों को सुनते हैं, तो यह निश्चित रूप में ईश प्रजा के लिए संदेश का संचार करेगा, क्योंकि हृदय में जो भरा है वही तो मुख से निकलता है। रविवार के पाठों में विश्वासियों के हृदय में वह चमक प्रतिध्वनित होगी जिसे पहले उपदेशक अपने हृदय में प्रदीप्त होता अनुभव करता है। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त उन शिक्षकों से क्रोधित होते हैं जो दूसरों से अधिक मांग करते हैं। वे लोगों को ईश वचन की शिक्षा तो देते, लेकिन वे स्वयं अपने को इससे आलोकित नहीं पाते हैं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगुली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते हैं। प्रेरित संत याकूब हमें अपने प्रबोधन में कहते हैं, भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। जो कोई भी प्रवचन देने की चाह रखता हो, वह अपने को ईश वचन से गहरे रूप में प्रभावित होने दे और उसके द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में नवीनता को प्राप्त करे। इस तरह से प्रवचन उसके लिए वह क्रिया होगी अति प्रबल और फलदायक, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, क्योंकि व्यक्ति ने उन पर स्वयं चिंतन किया है। इन सभी कारणों से तैयारी से पहले कि हमें क्या कहना है, हमें चाहिए कि हम अपने को उस शब्द से प्रभावित होने दें जो दूसरों को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह एक सजीव और सक्रिय शब्द है, जैसे कि एक तलवार जो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। हमारी प्रेरिताई के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। आज भी लोग साक्ष्यों को सुनने की चाह रखते हैं। हम उन्हें सच्चाई की चाह हेतु प्यासे पाते हैं और वे उपदेशकों को निमंत्रण देते हैं जो ईश्वर के बारे में जिक्र करते, जिनके बारे में वे स्वयं जानते और अपने को परिचित पाते हैं। इस भांति ऐसा प्रतीत होता है मानो वे उन्हें देख रहे हों। श्रोताओं, हमसे दोष रहित होने की मांग नहीं की जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते, हमें धर्म ग्रंथ में विकसित होने और इसके मार्ग में आगे बढ़ने की मांग की जाती है। हमारी भुजाएं कभी ढीली नहीं होनी चाहिए। उपदेशक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने में इस बात को लेकर सुनिश्चित हो कि ईश्वर उससे प्रेम करते हैं, कि यीशु ख्रिस्त ने उन्हें बचाया है और उनका प्रेम उसके लिए अंतिम शब्द है। इस तरह की सुंदरता से मिलन उसे सदैव इस बात की अनुभूति प्रदान करेगी कि उसका जीवन ईश्वर की महिमा वैसे नहीं करता जैसे उसे करने की जरूरत है, और वह अपने में निष्ठापूर्ण ढंग से ईश्वर के वृहद प्रेम का प्रत्युत्तर देने को इच्छुक रहेगा। यद्यपि वह ईश्वर के वचनों को खुले हृदय से सुनने हेतु तैयार नहीं रहता, यदि वह उसे अपने जीवन का स्पर्श करने नहीं देता, अपने को चुनौती देने नहीं देता, प्रेरणा नहीं लेता, और यदि वह अपना समय उन वचनों को लेते हुए प्रार्थना में व्यतीत नहीं करता, तो वह वास्तव में एक झूठा नबी, एक धोखेबाज, एक छिछला उपदेशक होकर रह जाता है। लेकिन अपनी निर्धनता को स्वीकारते हुए अपनी निष्ठा में बढ़ने की चाह उसे सदैव ईश्वर के हाथों में समर्पित करता है, जिसे हम संत पेत्रुस के वचनों में सुनते हैं, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं उसे तुम्हें देता हूँ। ईश्वर हमें सजीव, स्वतंत्र और रचनात्मक मनुष्य बनाने की चाह रखते हैं, जो अपने हृदय में ईश्वर के वचन को प्रवेश करने देते हैं और उसके बाद वे उसे दूसरों को प्रसारित करते हैं। यीशु ख्रिस्त का संदेश सच्चे रूप में उपदेशक के अंदर प्रवेश करे और उसे अपने गिरफ्त में ले, न केवल बौद्धिक रूप में बल्कि उसके सारे अस्तित्व को। पवित्र आत्मा जो ईश्वरीय वचन के संबंध में हम में प्रेरणा लाते हैं, आज भी जैसे कि उन्होंने कलीसिया के शुरू में किया, हर एक उपदेशक में क्रियाशील होते जो अपने को उनके द्वारा संचालित और प्रेरित होने देते हैं। पवित्र आत्मा उनके होठों पे अपने शब्दों को रखते हैं जिसे वह स्वयं में नहीं कर सकता है। श्रोताओं, हमने आज के अपने प्रसारण में संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गाउडियम सुसमाचार की खुशी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। लाजारो ह्यू ड्यूंग सिक कोमे ला फोलगोरे वियने द ओरिएंटे पुस्तक में डॉन फ्रांसेस्को कॉन्स्टेंटिनो ने पुरोहितों के लिए गठित परम धर्म पीठीय विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल लाजारो यू ह्यूंग सिक के अनुभवों को एकत्रित किया है। इस नई पुस्तक की प्रस्तावना में संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं, कलीसिया अपनी धार्मिक और पूजन विधि परंपरा में हमेशा पूर्व की ओर मुड़ी है और हमें वहां देखने के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि पूर्व से प्रकाश न्याय का सूर्य चमकता सितारा जो ख्रीस्त है उदय होता है। संत पापा लिखते हैं, कलीसिया को हमेशा ख्रीस्त और उसके सुसमाचार द्वारा प्रबुद्ध होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह उस कलीसिया के नहीं होने का जोखिम उठाता है जिसे यीशु चाहते हैं। यीशु आज भी एक स्कैंडल ठोकर का कारण बने हुए हैं, विरोधाभास का संकेत है जो हमारी सुरक्षा को चुनौती देते हैं और हमारे दिलों को हिला देते हैं, ताकि हम भय से लकवाग्रस्त ना हो, पाखंड में कैद ना हो और पाप से कठोर ना हो। संत पापा ने कार्डिनल के सौहार्द और मिलनसारिता की प्रशंसा की जो हमें शहीदों की भूमि में बोए गए विश्वास के फल को ग्रहण करने की अनुमति देता है और जो सादगी के साथ खिलता है। एक जीवित कलीसिया के आनंदपूर्ण साक्षी के लिए धन्यवाद। जो कहानी सामने आती है उसके संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं, हम सभी के लिए एक ऐसी कलीसिया के रूप में बने रहने की एक झलक देख सकते हैं जो सभी सांसारिकता से दूर यीशु और उनके सुसमाचार के प्रति वफादार है। संत पापा कार्डिनल लाजर और पुस्तक के संपादकों के प्रति कृतज्ञता के शब्दों के साथ अपनी प्रस्तावना समाप्त करते हैं। वे लिखते हैं, क्योंकि हम सभी को पूर्व से इस प्रकाश की आवश्यकता है, हमें अपने पूर्वी भाइयों और बहनों को सुनने की जरूरत है, पूर्व की यात्रा करने और आध्यात्मिक और कलीसियाई जीवन शैली से सीखने की जरूरत है जो हमारे विश्वास को फिर से मजबूत कर सकती है। अंत में वे कहते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि कठिनाई और अंधकार में भी प्रभु बिजली की तरह आते हैं और हमारे जीवन को रोशन करना चाहते हैं। उधर वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा बुधवार को संत पापा फ्रांसिस की 41वीं प्रेरितिक यात्रा का लोगो जारी किया गया और यात्रा के आदर्श वाक्य की घोषणा की गई। 28 से 30 अप्रैल तक हंगरी में संत पापा की 41वीं प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य है, ख्रीस्त हमारा भविष्य है। लोगो का मध्य भाग बुडापेस्ट चेन ब्रिज, डेन्यूब पर सबसे पुराना हंगरी पुल का प्रतिनिधित्व करता है। यह लोगों के बीच पुलों के निर्माण के महत्व के बारे में संत पापा फ्रांसिस द्वारा अक्सर संदर्भित विचार को उद्घाटित करता है। वाटिकन का रंग पीला और सफेद और हंगरी का रंग लाल, सफेद और हरा पुल के दोनों स्तरों पर मिलते हैं। लोगों के चारों ओर एक वृत्त है जो यूखरिस्ट और ख्रिस्त द्वारा बचाए गए विश्व दोनों का प्रतीक है। वृत्त के बाईं ओर बुदापेस्ट में 12 सितंबर 2021 को संत पापा फ्रांसिस द्वारा दिए गए संबोधन को याद करते हुए एक क्रूस है, जिसमें उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि क्रूस अतीत और भविष्य के बीच पुल बन सकता है। सर्कल की दाईं ओर आदर्श वाक्य ख्रिस्त हमारा भविष्य है। साथ ही हंगरी में संत पापा फ्रांसिस 28 से 30 अप्रैल 2023 अंकित है। और नए क्षुद्र ग्रहों का नाम 3 जेसुइटों और एक संत पापा के नाम पर रखा गया है। खगोलीय पिंडों का नाम संत पापा ग्रेगोरी अष्टम और जेसुइट पुरोहितों जोहान हेगन, बिल स्टोगर और रॉबर्ट जानुस के सम्मान में रखा गया है। ये वाटिकन ऑब्जर्वेटरी के 3 खगोलविदों और संत पापा ग्रेगोरी अष्टम के नाम पर रखे गए 4 क्षुद्र ग्रहों के नाम हैं। 562971 जोहान हेगन, 551878 स्टोगर, 565184 जानुस और 560974 उगो बोन कंपनी। संत पापा ग्रेगोरी अष्टम, जिनका पहले का नाम उगो बोन कंपनी था, वे ग्रेगोरियन कैलेंडर और परम धर्म पीठे खगोल विद्या और वेदशालाओं की परंपरा की शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं। फादर जोहान हेगन 1906 से 1930 तक वाटिकन ऑब्जर्वेटरी के निर्देशक थे। फादर बिल स्टोगन कॉस्मोलॉजिस्ट और धर्मशास्त्री हैं और फादर रॉबर्ट जानुस वर्तमान में वाटिकन ऑब्जर्वेटरी के स्टाफ हैं। 4 प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रहों के नाम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 7 फरवरी को अपने नवीनतम बुलेटिन में प्रकाशित किए गए थे। उधर छत्तीसगढ़ के ख्रिस्तियों ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री से फिर एक बार उनकी सुरक्षा के लिए अपील की है, क्योंकि सैकड़ों आदिवासी ख्रिस्तीय बढ़ती हिंसा के बीच जंगल में रह रहे हैं। राज्य में काम करने वाले एक कैथोलिक पुरोहित फादर जॉनसन ने कहा कि एक्यूमेनिकल एक्लेसिया यूनाइटेड फोरम EUF के तहत एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और उनसे हिंसा को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बघेल से मिलने के 3 दिन बाद 26 फरवरी को प्रतिनिधि मंडल में शामिल फादर जॉनसन ने उका न्यूज को बताया, छत्तीसगढ़ में खासकर आदिवासी क्षेत्रों में ख्रिस्तियों पर क्रूर हमले बेरोक टोक जारी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासी लोगों के प्रभुत्व वाले बस्तर क्षेत्र में ख्रिस्तियों ने अभूतपूर्व हिंसा देखी है। हिंसा के रूप में सामाजिक बहिष्कार, हमले, पुरुषों और महिलाओं को नग्न करके घुमाना और ख्रिस्तियों की भूमि पर कब्जा करना शामिल है। पिछले 6 महीनों में बढ़ी हिंसा ने 1000 से अधिक ख्रिस्तियों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया है। राष्ट्रीय विपक्षी कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित राज्य सरकार धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है, लेकिन कलीसिया के नेताओं का कहना है कि सरकार ख्रिस्तियों की रक्षा करने में विफल रही है। सरकार का दावा है कि प्रशासन ने इलाके में शांति स्थापित कर दी है और जो ख्रिस्तीय अपने घरों से भागे हैं, वे वापस आ गए हैं। ख्रिस्तीय नेताओं का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कार्यवाही अपर्याप्त रही है। छत्तीसगढ़ के ख्रिस्तीय अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गए हैं और अब भी डर के साये में जी रहे हैं। इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।